राम 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 हरे हरे। प्रियपनशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के आप प्रार्थनाओं के अंतर्गत दसम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना के 25वें श्लोक का आज पाठ करने जा रहे हैं। आत्मानमेवात्मत्या विजानताम् तेनैव जातं निखिल प्रपंचितं ज्ञानेन भूयो अपि च तत् प्रलीयते रजवन अह भोग भवा भवो यथा। रजवान अहेर रजवान रजू कहते हैं रसी को, अहेर अही कहते हैं सांप को, रजवान अही भोग भव 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 तथा अज्ञानता के कारण अंधकार के कारण रस्सी को सांप समझ के कोई भयभीत होता है, लेकिन प्रकाश हो जाए तो रस्सी समझेगा भय चला जाएगा। ये उदाहरण दिया है। रज्जवान अहेर भोग, अहेर भोग मतलब सांप का शरीर, भवा भवा अभवा, पहले लगता है कि सांप है फिर लगता है कि सांप नहीं है रस्सी में, ऐसे ही उदाहरण देके ऐसे ही आत्मानाम एव आत्मया अविजानंतम, जो आपको नहीं जानते हैं, आत्मानाम आपको निश्चित रूप से आत्मया परम पुरुष परमात्मा के रूप में नहीं जानते हैं, अविजानंतम नहीं जानते हैं। निखिल परपंच, उनके लिए यह संसार ही सारा सब कुछ है, पर आपको अगर एक बार जान लेंगे तो यह संसार नाश हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। जो अज्ञान के कारण अंधकार के कारण रस्सी को सांप समझ लेता है वो भयभीत होता है, परंतु जैसे ही प्रकाश में रोशनी होने से रस्सी समझ में आ गई सांप नहीं है तो भय समाप्त हो गया। ऐसे ही जो आपको परम पुरुष परमात्मा के रूप में नहीं जानते हैं, जो सब आत्माओं के आत्मा हैं, जैसे कल के श्लोक में कहा गया था, उनके लिए ये सारा विस्तृत संसार ही सब कुछ है, परंतु जो आपको जान लेते हैं उनके लिए संसार समाप्त हो जाता है। तो यहां संसार की तुलना दी गई है अज्ञानता के कारण उसको सब कुछ समझना, जैसे सांप समझना रस्सी को, और ज्ञान हो जाए तो वो जैसे रस्सी है ऐसे रस्सी समझ में आ जाएगी तो भय खत्म हो जाएगा। तो संसार की परपंच का भय तब तक है जब तक भगवान का ज्ञान नहीं है अथवा आत्मा का ज्ञान नहीं है। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, जो भौतिक जगत में डूबा हुआ है, जैसे कोई समुद्र के बीच में पानी में हो तो चारों ओर पानी ही दिखाई देगा, चारों ओर पानी के बीच में कोई व्यक्ति है तो उसको पानी दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ये संसार के माया के सागर में जो डूबा हुआ है उसको सब जगह माया ही दिखाई देगी। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे बड़े वैज्ञानिक है भौतिक, बड़े दार्शनिक है भौतिक, ये माया के समुन्द्र में गोते लगा रहे हैं और समझते हैं ये माया का जो ज्ञान है, ये माया का जो विस्तार है वो अनंत है, सर्वत्र है। परंतु जो शास्त्र को जानते हैं वो समझते हैं कि ये जगत तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि और ब्रह्मांड है, और ये तो भगवान को न जानने के कारण इस छोटे भौतिक जगत के अंदर हमारे को बद्ध जीवों को अज्ञानता के अंधार अंधकार में फेंका गया है हमारे कर्मों के आधार पे। जिस जगत में हम फंस गए हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर जहां जन्म लेना पड़े और जहां मरना पड़े वो जगह तो भयभीत है ही, भय में डालने वाली है ही। मृत्यु का भय जहां है वहां सुखी कोई नहीं रह सकता है। कोई अंधकार की जगह में अगर फंस जाए तो भयभीत होगा ही। तो ये भौतिक जगत पूरा अंधकारमय है, इसलिए हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञान अंजन शलकाय चक्षुरोन्मीलन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका जन्म अज्ञानमय अंधकार में हुआ है, ये संसार अंधकारमय है। जब तक गुरु का शरण लेके और दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान आत्मा का और भगवान का प्राप्त नहीं होगा तब तक हम सब अज्ञान के अंधकार में रहेंगे। और जब तक अज्ञान के अंधकार में रहेंगे तो हमारे को रज्जू सांप ही समझ में आएगा, तो रस्सी को सांप ही समझने की मूर्खता करते और भयभीत होते रहेंगे और भय हमारे लगा रहेगा। ये भौतिक जगत वास्तव में अनंत सत्य अंत आखिरी सच नहीं है। इसलिए जितना भी हम इस भौतिक जगत का विश्लेषण करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो भी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है। ये अंधकारमय हमारा भौतिक जगत का जीवन उस सांप के समान है जो हम अज्ञानता के कारण देख के भयभीत हो रहे हैं, पर जैसे ही भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, कृष्ण भावना में कोई आ जाए, तो ये रस्सी समझ में आएगी और भय खत्म हो जाएगा। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं,
लाइट कितने जला कर आए हैं,
ये जो जीव है
बालकनी की हॉल की भी चल रही है,
ये जीव है, ये है मूल। जिसको जीव का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो संसार में है, और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो संसार नाश हो जाए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ये ज्ञानियों का मत है, ज्ञानी कहते हैं आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान का संसार है, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा संसार समाप्त हो जाएगा, भगवान को जानने की क्या जरूरत है। इस सिद्धांत का यहां जीव गोस्वामी कहते हैं खंडन किया जा रहा है। जो अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं उनको भौतिक प्रकृति माया का शरीर दे देती है, परंतु जो भगवान का भक्त है परंतु जो भगवान के स्वरूप को जानता है वो माया के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान के स्वरूप की जानकारी अज्ञानता को नाश करती है, न कि आत्मा का ज्ञान अज्ञानता को नाश करता है। भगवत तत्व का ज्ञान अज्ञानता को नाश करता है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान तो होना ही चाहिए आत्मा का, पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए तभी अज्ञानता नाश होगी। और उदाहरण ये दिया है रस्सी को अंधकार में सांप समझना अज्ञानता है। अन्य स्थानों के भागवत के अंदर 11:237 में इसका वर्णन किया है, भयम् द्वैत्या अभिनिवेशे तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्यो स्मृताः स्मृतिः तन मायया यतो बुद्ध आ भजेत तम भक्त्या एकेशम गुरुदेवते आत्मा। ये भागवत धर्म का श्लोक है। जो जीव भगवान से बेमुख है, ईशाद अपेतस्य, भगवान से जो जीव बेमुख है उसके लिए संसार है। और संसार है का अर्थ है कि वो अपने आप को शरीर समझता है और आत्मा का उसको ज्ञान नहीं है। और फिर क्योंकि शरीर और शरीर के ही सारे संबंध में जीवन में डूबा हुआ है तो माया में है और आत्मा को अपने आप को जानता नहीं है। इसलिए उसको बुद्धिमान अगर है तो गुरु का शरण लेना चाहिए जो भगवान का प्रतिनिधि है। और भजेत, और भगवान का भजन करना चाहिए। भजेत आ भजेत तम भक्त्या, शुद्ध भक्ति के द्वारा भजन करना चाहिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक के भाव को श्रीधर स्वामी भागवत के श्लोक के भाव को ग्यारहवें स्कंद वाले को लिखते हैं, माया भगवान ने प्रकट की, सर्जर की, माया की सृष्टि भगवान ने की और वो हमको सबको भयभीत कर रही है। तो जो बुद्धिमान है वो भगवान का भजन करेगा तो माया से बच जाएगा। तो भय किसके कारण है? बोला शरीर के कारण है, क्योंकि मरना शरीर को पड़ेगा और वो शरीर मिला है अज्ञानता के कारण, आत्मा का ज्ञान नहीं था इसलिए शरीर मिला। तो माया करेगी क्या? बोला जो भगवान से बेमुख है उसको माया अपने स्वरूप को समझने भी नहीं देगी। ये प्रश्न सनातन गोस्वामी ने पूछा था भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु से कि संसार में सब सुख का प्रयास करते हैं, सबको दुख क्यों मिलता है? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, अनादिकाल जीव कृष्ण बाहर मुख अत्मा, अतेव माया दे तहां संसार दुख। भगवान श्री कृष्ण से बेमुख होने के कारण जीव अनादिकाल से दुख भोग रहा है। कृष्ण की ओर सन्मुख हो जाए तो दुख समाप्त हो जाए। और जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो उसके विपरीत केवल शरीर का ही ज्ञान होगा और उससे भय होगा। इसी को माया कहते हैं। तो ये तो भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया यो माम प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंतिते। जो ये माया से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, जो भगवान का शरण लेगा वो माया से मुक्त होगा। तो ये ज्ञानी कहते हैं हमारे को अपना ज्ञान हो जाएगा हम माया से मुक्त हो जाएं, ये सत्य नहीं है। भगवान का ज्ञान होने से माया से मुक्त हो जाए, क्योंकि माया भगवान की हमारी नहीं है। सुखदेव महाराज अपनी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाह रहे थे, व्यासदेव ने कहा बेटा आ जाओ। बोला बाहर माया पकड़ लेगी। बोला नहीं पकड़ी। बोला माया आपकी है क्या? निरुत्तर हो गए व्यासदेव। श्री कृष्ण इसी धरती के प्रकट हो चुके थे, उनको लाए और उसने जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुखदेव आ जाओ, बोला माया मेरी है आपको नहीं छुएगी। तो ये सिद्ध करता है कि माया से मुक्त होना है तो मायापति भगवान मुकुंद माधव मुरलीधर का शरण लेना पड़ेगा। केवल खंडन मंडन करके ज्ञान के आधार पे ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी तो माया नहीं है। महामाया हमारे अधीन तो माया नहीं है, माया तो भगवान के अधीन है। इसलिए स्वयं भगवान का नाम लो, कृष्ण नाम लो या राम नाम लो या भगवान का कोई भी नाम लो तो माया चली जाएगी। परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है और कृष्ण प्रेम परम लक्ष्य है भाग्यशाली भक्तों का। ये इस श्लोक से समझना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, आसानी से बहुत सिंपली सुख से सरलता से सहज ही संसार को कैसे समाप्त किया जाए। संसार माने जन्म मृत्यु, परंतु बहुत से लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि वो आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, उनका स्वरूप क्या है वो नहीं जानते हैं। उनके लिए ये सारा जगत अज्ञानता के कारण, बंधन का कारण है। आत्मज्ञान जिनको प्राप्त हो जाए वो कम से कम अज्ञान से निकल आएंगे। जो भगवान को नहीं जानते हैं, कैसा है भगवान? आत्मतया सबसे प्रिय है। जो अपने प्रिय भगवान को नहीं जानते हैं वो अज्ञानता के संसार में सदा ही दुख भोगते हैं, और वो दुख ही संसार का कारण है। सही ज्ञान हो जाए, पर लियते, सही ज्ञान हो जाए तो ये संसार अपने आप नाश हो जाएगा आसानी से। चाहे जो शब्द है इस श्लोक में, उसको तो फिर मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहेगी। भौतिक जगत क्या है, क्या उसकी मुक्ति भौतिक जगत से होगी? क्या वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करेगा? वो तो भगवान के प्रेम को ही प्राप्त करेगा। एक और श्लोक पढ़ेंगे आज। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षो द्वौ नाम न अन्यौ स्तरितज्ञ भावात् अजसरचित्यात्मनि केवले अपरे केवले परे विचार्यमाणे तरणाव इवाहन्ति। ये जो तरणाव, तरणाव जो शब्द है इसका अर्थ है सूर्य। इव अहंति, अहर निशा कहते हैं दिन रात को। दिन रात का विभाजन तब होता है जब सूर्य होता है तो दिन है, नहीं होता है तो रात है। लेकिन क्या सूर्य में दिन रात है? क्या सूर्य में दिन रात नहीं होता? सूर्य के अभाव को ही रात कहते हैं। विचार्य माने कोई विचार करेगा, कोई अच्छी तरह से विचार करेगा तो ये समझेगा कि सूर्य के न होने के कारण रात कहते हैं, सूर्य होता है तो दिन कहते हैं। सूर्य के अंदर न रात है न दिन है। अज्ञान संज्ञा, ये अज्ञान की संज्ञा है। संज्ञा कहते हैं अज्ञान की संज्ञा है, मतलब ये अज्ञान का स्वरूप है, इसको अज्ञान कहते हैं। भव बंध मोक्ष, भव कहते हैं संसार सागर को, और बंध और मोक्ष का मतलब मैं संसार से मुक्त हो गया, मैं संसार में फंस गया, ये दोनों। दिवो नाम न अन्य हो, ये दोनों जो हैं वास्तव में अलग नहीं है। अज्ञान के अभाव से ऐसे लगता है ये दो अलग नहीं है। अगर कोई कहे कि ये संसार मिथ्या है तो फिर मुक्ति कौन सा सत्य होगी? तो ये जो ज्ञानियों का लक्ष्य है कि हम बंध मोक्ष बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे हैं जैसे सूर्य के अभाव में दिन रात का पता लगता है। सूर्य में न दिन होता है न रात होता है। ऐसे जो वास्तव में आत्मा के स्वरूप को और भगवान को जानते हैं वो बंधन मुक्त से परे हैं। बंधन किसको है? प्रभुपाद जी एक बार एक उदाहरण दे के कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। अरे तो लाया क्या था मेरा भाई? प्रभुपाद जी कहते दुनिया में तुम्हारा है क्या जिसको तुमने त्याग किया? ये तो तुम्हारा पहले था ही नहीं, तुम इसको त्याग कह रहे हो मैंने त्याग किया। क्या तुमने त्याग किया? तुम लाए क्या थे? तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो क्या तुमने त्याग किया? तो ये भी हमारी एक सोच है केवल। तो यहां इस श्लोक कहता है भौतिक बंधन और मुक्ति दोनों ही अज्ञानता का सूचक है। अज्ञानता की संज्ञा है, का मतलब अज्ञानता का सूचक है। ये ज्ञान के दायरे से बाहर है, ज्ञान के जो किसको क्या कहते हैं, परिहित कहते हैं क्या, बाउंड्री से बाहर है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उनका वजूद ही समाप्त हो जाएगा जब हम अच्छी तरह से आत्मा के स्वरूप को जानेंगे। आत्मा चेतन है, शरीर से अलग है, ये जब जान लेंगे उस समय बंधन और मुक्ति दोनों अपने आप समाप्त हो जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे दिन रात का महत्व सूर्य में कैसे रह सकता है। तो भौतिक जगत का, ये माया का जगत जो है, ये माया है, जगत से हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इस जगत से हमारा संबंध है क्या, कोई संबंध नहीं है भाई। जेल से हमारा क्या संबंध है, हमको डाल दिया गया है अंदर, हम थोड़ी अपनी इच्छा से आए हैं। तो संसार का बंधन भी माया है, क्योंकि वास्तविक हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है। हमारा तो संबंध ना वास्तव में भगवान से है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, परंतु हमने संसार से संबंध मान रखा है। कैसे मान रखा है, झूठे अहंकार के कारण। अहंकार के आगे झूठा झूठा लगाना पड़ेगा। सच्चा अहंकार भी होता है मैं भगवान का हूं, झूठा अहंकार होता है ये शरीर मेरा है, मैं संसार का हूं, मैं संसार का हूं झूठा अहंकार है, मैं भगवान का हूं सच्चा अहंकार है। सच्चा अहंकार भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है, झूठा अहंकार बंधन का कारण है। झूठे अहंकार के कारण हम अपने आप को भौतिक जगत और इस शरीर से बांध देते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं। तो वास्तव में मुक्ति का अर्थ है कि इस अज्ञानता को छोड़ना है और कुछ नहीं, कहे झूठे अहंकार को छोड़ना है, जिसको हमने मैं मान के रखा है उसी को छोड़ना है और कुछ नहीं है। वो एक व्यक्ति दोनों हाथ से खंभे को पकड़ के कह रहा था मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। भाई तुम्हें पकड़ा किसने, तुम ही ने खंभे को पकड़ के रखा है, छोड़ दो और चले जाओ। तो हमने संसार को पकड़ के रखा है, बंधन हमारे झूठे अहंकार के कारण है, हटा दो खत्म हो गया। तो ये माया का पर्दा हट गया तो बंधन कट गया। तो वास्तविक तो बंधन है ही नहीं, तो क्या बंधन रहेगा कहां, ये तो एक माना हुआ बंधन था और छूट गया, जैसे समझ आ गई तो छूट गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कोई कहे कि संसार में दुख है, और है भी संसार दुखालयम, दुख तो है ही संसार में, मैं दुख से मुक्त हो जाना चाहता हूं। चलो भाई दुख से मुक्त हो गए, फिर इसके बाद क्या करोगे। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, बहुत दुखी हूं यहां मुझे बाहर निकालो, बाहर निकाला फिर करोगे क्या। जेल के गेट पे आए, जेल से बाहर निकाल दिया, बाहर जिनके साथ पहले आपका संबंध था उन्होंने आपको चोर मान लिया के हत्यारा मान लिया, वो तो आपसे संबंध रख नहीं पा रहे हैं, तो आपका संबंध बाहर किसी से है नहीं, बाहर निकल के आके मिला क्या। और सच्ची कहते हैं, हम सच्ची आपको बात बता रहे हैं, हम जब जेल में प्रचार करना जाते थे, एक माता जी जेल में हमको मिली, अभी उम्र 40-50 से ऊपर हो गई थी, वो रोटियां बनाती थी सब अपनी माताओं की, जेल का लेडीज जेल थी उसमें। तो हमने ऐसे ही पूछा कैसे माता जी आपको आना हुआ, बोला मेरे को पति की हत्या का आरोप लगा दिया, अब मेरा भगवान जानता है मैंने मारा कि नहीं मारा, लेकिन 14 साल से यहां हूं। अब ये मुझे कहते हैं कि तुम को जेल से निकालते हैं, जाओ। मैंने बोला मैं कहां जाऊं, न तो मेरे को ससुराल वाले स्वीकार करेंगे, वो सब कहेंगे कि हमारे बेटे को मारा है, न ही समाज में मेरा परिवार हमको स्वीकार करेगा। इससे तो कम से कम यहां सबके साथ बैठी हूं, 25-50 ये हैं, इनका घर परिवार की तरफ मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती। तो यह एक बहुत बड़ी बात लिखी जा रही है कि आप मुक्त भी हो जाओ संसार के दुख से, लेकिन आपको सकारात्मक कोई और अच्छा बाहर प्रेम करने वाला, सेवा लेने वाला, सुख देने वाला न मिले तो बाहर निकलने का फल, निकलने का लाभ क्या हुआ। तब यहां लिखा है ऐसी कोरी मुक्ति भी किसी काम की नहीं है। वास्तविक जो हमारा आनंदमय, जो जीव का आनंदमय स्वरूप है, तो भगवान जो परम आनंदमय अभ्यास साथ है, उसके साथ जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक मुक्ति भी हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती। दुख गया लेकिन सुख तो मिला ही नहीं, जेल से निकले दरवाजे पे अटक गए, आगे शहर तो गए ही नहीं, कोई जानता ही नहीं किसके पास जाए। तो हमारे को सकारात्मक जीव के स्वभाव के अनुरूप भगवत प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, तब हमारा जीवन सकारात्मक होगा, उसका हमारे जीवन का कुछ माना रहेगी, कुछ महत्व रहेगा। और जीव जो नित्य है उसको नित्य प्रेम, नित्य सेवा मिल जाएगी, तब वास्तव में वो सुखी होगा। तो रात का अंधकार सूर्य के अभाव के कारण होता है और दिन में सूर्य उगता है, दोनों को हम अलग करते हैं, ये दिन है रात है। ऐसे जब भगवान से संबंध हो जाएगा तो हमारे लिए न मुक्ति रहेगी न बंधन रहेगा। इसलिए आप भागवत में बहुत प्रसिद्ध रूप से देखेंगे कि सारे भक्तों ने कहा है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, और भाव भक्ति का तो लक्षण है मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष को तो वो तुच्छ मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, उसको तो तिनके के समान भी महत्व नहीं देते हैं, वो तो भगवान की सेवा को ही सर्वस्व मानते हैं। तो मुक्ति से ऊपर प्रेम भक्ति है, ये मुख्य बात कही जा रही है। जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएगा तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और तब वास्तव में जीवन शुरू होगा। चक्रवर्ती प्याल लिख रहे हैं, चक्रवर्ती कहते हैं ये ज्ञानी कहते हैं जगत मिथ्या है, तो फिर इस जगत मिथ्या से मुक्ति क्या मांगते हो, तो तुम्हारी मुक्ति भी तो मिथ्या ही हो गई ना। मिथ्या से मुक्त होने का महत्व क्या हुआ, कोई महत्व नहीं है। तो इस संसार में बंधन और मुक्ति दोनों ही अज्ञानता के कारण है। जैसे वास्तव जीव का ज्ञान हो जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, तो बंधन और मुक्ति दोनों समाप्त हो गए। जैसे सूर्य के अंदर चले गए, सूर्य का ज्ञान हो गया तो दिन और रात दोनों समाप्त हो गए। सूर्य के लिए कोई दिन रात है क्या? सूर्य के लिए दिन रात नहीं है, हमारे लिए दिन रात है, जहां हम सूर्य देखते हैं सूर्य को नहीं देखते हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं ऋतज्ञ भावात का अर्थ है, रित मतलब खाली, ज्ञ भावात जानकारी नहीं है, विशेष आत्मा की जानकारी नहीं है कि आत्मा नित्य है, ये जो नहीं जानता है। अजसर चितात्मनि, चित का अर्थ है ज्ञान, और ये ज्ञान सूर्य के समान है। तो अजसर का हमने कल अर्थ पढ़ा था, अजसर का अर्थ है रुकावट, किसी के काम में कोई बाधा। तो जिसके प्रकाश में कोई बाधा नहीं है, चित्त का मतलब प्रकाश, ज्ञान का मतलब प्रकाश, जिसके प्रकाश में कोई बाधा नहीं है, इसका मतलब जो सूर्य में बैठा है उसके लिए दिन रात कहां है? भाव और आत्मा का अर्थ भी एक है। इसका अर्थ है कि जो हमारे को जीवन का के मैं हम हैं कैसे, हमारा अस्तित्व कैसे है, भव हमारा भाव कैसा है, कैसे है हम, पर आत्मा है तब हम हैं, तो उसका अर्थ भी एक है। तो जो हमने 25वां श्लोक पढ़ा उसमें भी आत्मनि शब्द था, आत्मानम था, वो भी जीव के लिए था। तो जीव को, जीव के विषय में हमको ज्ञान हो जाए, जीव आत्मा के स्वरूप का पता लग जाए, तो बंधन से मुक्त होंगे भगवान की कृपा से। युष्मद् भवत्, ये जो शब्द है ये भगवान का सूचक है। भगवान जीव से अलग भगवान का ज्ञान भी होना चाहिए। बंधन और मुक्त आत्मा के ज्ञान से अलग है। बंधन और मुक्त, जीव मुक्ति है, ये माया का पसारा है। जब जब आत्मा के स्वरूप और भगवान के संबंध को जानेंगे तो फिर इन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, संसार से मुक्त होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये कहा गया है। ये श्लोक कहता है मुक्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जब वास्तविक ज्ञान हो जाएगा ऋतज्ञ भावात, तो फिर न रहेगी, न रहेगा बंधन, न रहेगी मुक्ति। इन दोनों का अस्तित्व मिथ्या है, सत्य नहीं है। आत्मनि, जब हम आत्मा का अनुभूति करेंगे, और आत्मा कैसा है, अजस्र चित्ती, आत्मा सच्चित आनंद है, चित्त का मतलब आनंदमय है आत्मा, केवल है वो, बहुत पवित्र है, शुद्ध शुद्ध है, परे वो भौतिक प्रकृति से परे है। और जब आत्मा सच्चित आनंद है तो बंधन किसका और मुक्ति किसकी, ना मुक्ति है ना बंधन है उसके लिए। जैसे सूर्य के लिए ना रात है ना दिन है, हमारे लिए रात दिन है क्योंकि हम अज्ञानता में है। संसार समाप्त हो जाए और हम मुक्त हो जाए, इसका इतना महत्व नहीं है, इसलिए जीवन का लक्ष्य नहीं है। और इसका और एक अर्थ यह है कि केवल एक का मतलब, जब तक हम एकमात्र भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, परे का मतलब भगवान, आत्मनि मन में जब उसका चिंतन नहीं करेंगे, अथवा जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, तो फिर न बंधन रहेगा न मुक्ति रहेगी, दोनों समाप्त हो जाएंगे। बोलो दोनों कैसे समाप्त हो जाएंगे? क्यों, भगवान अजस्र आत्मा है, भगवान तो सच्चित आनंद है ही, सूर्य है, कृष्ण है सूर्य समान, बहुत अच्छा था चेतना चैतन्य में तो स्पष्ट बताया है, सूर्य कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां सूर्य तहां माया नहीं अधिकार, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो माया ही बंधन और मोक्ष का कारण है, जहां माया है ही नहीं वहां बंधन और मोक्ष कहां है, कृष्ण से संबंध हो जाए तो वो तो अजस्र चित्ती है, वो तो सत्य प्रकाश है। तो भगवान का चिंतन करने से दोनों का ज्ञान हो जाएगा, ये सूर्य के समान है, तो दिन और रात दोनों को समझ जाएंगे। तो मुक्ति हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, परंतु कृष्ण प्रेम हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस श्लोक पढ़ के रखते हैं आज क्लास है अभी। त्वामात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्म पुनर्बहिर मृग्य अहो अज्ञः जनता जनता अज अज्ञता। भगवान आप आत्मानम वास्तविक है, परम मत्वा ऐसा सोचना, परम किसी और चीज का, आत्मानम आपका वास्तव में और फिर कहीं बाहर ढूंढें, मृग्या मृग्या का मर और कहीं बाहर ढूंढें, तो फिर अज्ञानी पुरुष कहा जाएगा। इसके ऊपर चर्चा आज करेंगे कल करेंगे। देखिए तो मूर्खता उन अज्ञानियों की जो आपको कुछ माया का शरीर धारण करने वाला मानते हैं अथवा माया का कुछ विस्तार मानते हैं। और अपने आप को आत्मा को जो आपका अंश है वास्तविक है उसको कुछ और मानते हैं, उसको शरीर मानते हैं अपने आप को, ऐसे मूर्ख ये निर्णय निकालते हैं कि परमात्मा की खोज करनी है परम पुरुष भगवान से अलग। ये परमात्मावादी हो गए, भगवान से अलग परमात्मा को ढूंढते हैं। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य चकित होके कहते हैं देखो तो महामूर्खता बद्ध जीवों की, जो भगवान श्री कृष्ण जिनका श्री विग्रह सच्चित आनंद है उसको भौतिक शरीर मानते हैं, वो समझते हैं ये भी माया वाला शरीर है। और बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी इस धरती के ऊपर ऐसे कहते हैं कि माया का शरीर कृष्ण का, मर गए जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को न जानने के कारण वो अपने शरीर को ही, अपने आप को ही शरीर मानते हैं, आत्मा का अस्तित्व अपना भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसको ढूंढना है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत कटाक्ष करते थे कि लिखते हैं कि भगवान ने कहा है मन मनाओ, तो कहते हैं कृष्ण को नहीं, कृष्ण के अंदर जो है उसको ढूंढो, उसमें मन लगाओ, और कृष्ण के अंदर और कृष्ण से अलग किसी और को ढूंढो। वो कृष्ण को भी एक जीव मानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं की भगवत गीता को अथवा ब्रह्मा जी के इन वचनों को नहीं सुनते हैं और अपने मन से कुछ विचार करके अपने को भी भगवान के समान मानते हैं या भगवान को अपने समान मानते हैं, और इसका कारण केवल उनका अज्ञान है। और कहते ये तो सब जीवन का रहस्य है, बस इतना कह के जान छोड़ते हैं। जो लोग अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाले मानते हैं, परंतु वो वास्तव में ज्ञानी नहीं है। वो आपके ब्रज के इस गोपाल रूप में आसक्त नहीं है। वो क्या करते हैं, वो भूसा कूट रहे हैं, कहीं उसको चावल नहीं मिलेगा जो पहले कहा गया है। वो सोचते हैं कि आप परमात्मा हैं, परंतु परम जो आपसे है वो कहीं और है। आप भौतिक हो और वो परमात्मा को कहीं और ढूंढते हैं, आप में नहीं और कहीं ढूंढते हैं। क्या उन मूर्खों की मूर्खता की बात करें। ये विवर्तवादी हैं, ये परिणामवादी हैं। वो भौतिक ही बात करते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। वो चिद ब्रह्म, यहां बताया गया है शब्द ब्रह्म, वपु दधार, भागवत में बताया गया कि चिद ब्रह्म का स्वरूप है। तद वपु भाति विभू संधया संधयोधि अव्यक्त चिद अव्यक्तम अधर्य विध अधर अध्रियद विभो बभूवतेनेव स वामनः। आठवें स्कंद में वामन देव के लिए लिखते हैं, वो स्वरूप जिसके ऊपर सुंदर आभूषण थे, अस्त्र शस्त्र थे, जो अदृश्य है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, अपनी कृपा से भगवान ने दिखाया, उसके माता पिता ने देखा वामन देव को एक ब्राह्मण बालक के रूप में। पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए, फिर वो जैसे कोई अभिनेता अपने रूप को बदले ऐसे बालक के रूप में हो गए। श्रुति में जिस रूप का वर्णन है, सत्य ज्ञान अनंत सत्य ज्ञान आनंद, ये जो श्रुति में लिखा है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है 10-13 में इससे पहले, ये गोपाल के लिए लिखा है जो मेरे सामने खड़ा है। यही सत्य ज्ञान है, अनंत है, और यही सत्य ज्ञान है, आनंद है। अनंत भी है, आनंद भी यही है। गोविंद सच्चिदानंद ब्रह्म वृंदावन सुरौभो तलसन तलासीनम, ये सच्चिदानंद रूप में साक्षात गोपालपुरी, यही ब्रह्म है। गोपाल तापनी उपनिषद में शास्त्र के इन बातों को नहीं जानने वाले अज्ञानी अंधकार के कारण भगवान श्री कृष्ण आपके स्वरूप को माया का मान के और आपके अतिरिक्त और कहीं भगवान को ढूंढने की भूल करते। कितने पतित हैं वो। और परंपरागत गुरुओं का शरण नहीं लिया हुआ है तो फिर ऐसी ही स्थिति होगी संसार की। और मूर्ख की दूसरी परिभाषा है बुद्धिमान भी कितने बड़े महामूर्ख है। हरे कृष्ण। यहां कथा को विराम देते हैं। जीव गोस्वामी की इसके ऊपर चर्चा कल कृष्ण की कृपा से, कल तो संडे है, मंडे को करेंगे। हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा है। हरे कृष्णा।